पृष्ठ संख्या 26, अध्याय 2, राग गोरख कल्याण या गोरख। राग गोरख कल्याण एक आधुनिक एवं खमाज थाट जनित राग है। इसमें निषाद कोमल व अन्य स्वर शुद्ध हैं। कुछ विद्वान गोरख कल्याण में केवल गंधार वर्जित मानते हैं तथा कुछ विद्वान गंधार व पंचम वर्जित मानते हैं। इसके विपरीत कुछ अन्य गुणिजन आरोह में गंधार तथा पंचम और अवरोह में केवल गंधार वर्जित मानते हैं। इस प्रकार प्रचार में औडव औडव या औडव शाडव एवं शाडव शाडव इसकी जाति मानने का बहुमत है। गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है एवं वादी मध्यम संवादी षड्ज है। मुख्य रूप से ऋषभ मध्यम निषाद इसमें न्यास के स्वर हैं। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में राग रचनाकारों ने जो रागों के नाम रखे हैं उनमें रागांग रागों के उपभेदों का नाम अधिकतर रागांग राग से संबंधित रखा है, यथा श्याम कल्याण, जैत कल्याण, सावनी कल्याण, श्री कल्याण इत्यादि। इन रागों के अंत में जो कल्याण का नाम आया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के नाम वाले राग कल्याण के प्रकार हैं। तदनुसार इसके पूर्वांग उत्तरांग या आरोह अवरोह क्रम में मूल राग अर्थात रागांग राग कल्याण अवश्य मौजूद रहेगा। इसी प्रकार का नियम अन्य रागांग रागों के प्रकार में भी विद्यमान है जो एक व्यवस्था युक्त प्रणाली लगती है। यद्यपि अधिकतर रागों के नाम का कोई विशेष अर्थ या उसमें कोई गूढ़ तत्व का दर्शन नहीं होता है, परंतु प्रस्तुत राग गोरख कल्याण के नाम और स्वरूप में कोई सामंजस्य नहीं दिखता है। नाम तो इसका है गोरख कल्याण, लेकिन कल्याण अंग का दर्शन तो क्या, कल्याण अंग के आभास का भी अभाव है। यह सत्य है कि राग के रचनाकार ने इसका स्वतंत्र रूप एवं इसे आकर्षक बनाया है, परंतु नामकरण करते समय तो इस राग के साथ उपहास ही किया है। इस हेतु मेरे विचार से प्रस्तुत गोरख कल्याण को नाम दोष से मुक्त करने के लिए संगीत के विद्वान जन इस राग को केवल गोरख नाम से संबोधित कर तदनुसार शिक्षा दीक्षा एवं प्रदर्शन में व्यवहार करें तो यह नाम दोष से मुक्त हो जाएगा तथा भावी पीढ़ी के संगीत साधकों की भी भ्रांति दूर हो जाएगी। पृष्ठ संख्या 27। प्रचार में गोरख कल्याण के जो तीन प्रकार सुनाई पड़ते हैं तथा शाडव शाडव जाति के तथा औडव शाडव जाति के और औडव औडव जाति के, इन तीनों प्रकारों में किसका स्वरूप कितना मधुर एवं अपने निकटवर्ती राग से भिन्न है, सर्वप्रथम इस पर विचार करना परम आवश्यक है। जो लोग इस राग में केवल गंधार वर्जित कर इसकी जाति शाडव मानते हैं उन्हें इसके संप्रकृत राग नारायणी का सामना करना पड़ता है। माना कि आरोह में पंचम को दुर्बल रखते हैं, परंतु मेरे विचार करने पर आरोह का पंचम अनावश्यक सा प्रतीत होता है। हाँ, अवरोह में कोमल नी ध म ध प म इस भांति लगने से रागालाप में कुछ नवीनता अवश्य आ जाती है, परंतु आरोह का पंचम तो राग नारायणी को निकट लाकर एक संकट ही उत्पन्न करता है। इस हेतु अधिकतर विद्वान इस गोरख कल्याण के अनुयायी नहीं हैं। प्रस्तुत राग का औडव शाडव जाति का जो दूसरा प्रकार है यह कुछ व्यवस्था युक्त अवश्य है, क्योंकि आरोह में पंचम वर्जित हो जाने से एक स्वतंत्र राग दिखाई पड़ता है। यद्यपि अवरोह में भी पंचम को अल्प ही रखते हैं, यथा तार सा नी ध म रे म ध कोमल नी ध म ध प म रे सा कड़युक्त मंत्र कोमल नी मंत्र कोमल नी मंत्र ध सा इत्यादि। तान में जितना अधिक पंचम का प्रयोग होने लगता है उतना ही नारायणी राग का आभास होने लगता है। इस कारण म ध कोमल निध म स्वर समूह के आधार पर ही द्रुत तान गाना निकटवर्ती राग से बचने का उत्तम उपाय है। यह प्रकार प्रथम प्रकार से अधिक प्रचलित है क्योंकि इसके स्वरूप में संकीर्णता कम है। इस हेतु अपने राम को भी यही प्रकार माने हैं, परंतु औडव औडव जाति का जो राग का तीसरा प्रकार है यह सभी रागों से भिन्न एवं स्वतंत्र है। पंचम वर्जित के साथ ही निकट का राग नारायणी इसके मार्ग से हट जाता है। इस हेतु प्रचार में अधिकतर यही प्रकार सुनाई पड़ता है तथा लेखक भी इसी अंतिम प्रकार का अनुयायी है। इस कारण विशेष रूप से हम यहाँ गोरख कल्याण के इस औडव प्रकार की ही चर्चा करेंगे। इस राग का मूल स्वरूप इस प्रकार है, यथा सा रे म रे म रे सा कणयुक्त मंद्र कोमल नी मंद्र कोमल नी मंद्र ध सा मंद्र ध सा रे म रे सा मंद्र कोमल नी रे सा कणयुक्त मंद्र कोमल नी मंद्र ध सा रे म ध कोमल नी ध म ध कोमल नी ध तार सा तार रे तार सा कोमल नी ध म रे म रे म रे सा मंद्र कोमल नी मंद्र कोमल नी मंद्र ध सा इत्यादि। पृष्ठ संख्या 28। इस राग के मंद्र सप्तक का निषाद और धैवत ध्यान देने योग्य है। मध्य सप्तक का धैवत निषाद तो बागेश्वरी राग का आभास उत्पन्न करता है, परंतु मंद्र में तो यह स्वर रेमा रेसा मंद्र कोमल नी मंद्र कोमल नी मंद्र ध सा व रेमा रे सा कड़युक्त मंद्र कोमल नी रे सा कड़युक्त मंद्र कोमल नी मंद्र ध सा इस रूप में सामने आकर राग का मूल आधार बन जाता है। उत्तरांग में जो तार सा कोमल नी ध कोमल नी ध म तार रे तार सा कोमल नी ध म इस तरह के स्वर समूह से बागेश्वरी राग का आविर्भाव होने लगता है। उसके लिए म रे म तथा म रे सा कड़युक्त मंत्र कोमल नी मंत्र या तार सप्तक के स्वर संगति का प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे बागेश्वरी राग का आभास दूर होता रहेगा। इसके अतिरिक्त आलाप के आरोहात्मक क्रम में निषाद का मंद्र कोमल नी मंद्र ध सा इस भांति वक्र प्रयोग ही करना चाहिए, अन्यथा मंद्र ध मंद्र कोमल नी सा इस भांति निषाद का सीधा प्रयोग बागेश्वरी राग का रंग उत्पन्न करेगा। इस हेतु राग विस्तार में निषाद के वक्रत्व को संभाले रखना राग के हित में है। प्रचार में एक अप्रचलित राग भवानी है जो केवल चार स्वरों का है, अर्थात इसमें ग प और नी वर्जित है, यथा सारे म ध तार सा ध म रे सा। गोरख कल्याण पर इसका भी प्रभाव पड़ता है, जैसे सारे म म ध म मंद्र ध सा रे म रे म ध म इत्यादि स्वर समूह से भवानी राग का आभास होने लगता है, परंतु निषाद के प्रयोग से भवानी राग की शंका मिटती है। प्रस्तुत राग में रे मंद्र कोमल नी व मंद्र ध सा स्वर संगति तथा म रे सा कड़युक्त मंद्र कोमल नी मंद्र ध मंद्र कोमल नी मंद्र ध सा यह स्वर समूह राग का स्तंभ है। इस हेतु इसका बराबर प्रयोग करते रहना चाहिए। राग विस्तार में कभी कभी गायक वादक रे मंद्र कोमल नी रे सा स्वर संगति का प्रयोग कर देते हैं, जो कभी कदाचित सामने आने पर राग का सौंदर्य बढ़ाने में सहायक होता है। पृष्ठ संख्या 29, स्वरों का प्रयोग तथा महत्व। श्रेष्ठ स्वर षड्ज इस राग में संवादि का स्थान ग्रहण किए हुए है। इसके अतिरिक्त ऋषभ इस राग में रेमा म रे सा रेमा ध म रेमा इस प्रकार न्यास और दीर्घ रहित होने पर भी बार बार षड्ज और मध्यम के बीच में प्रयोग होता है। इस हेतु ऋषभ स्वर का स्थान इस राग में अभ्यास बहुत्व का ही समझना चाहिए। मध्यम इस राग में आंशिक न्यास तथा संपूर्ण न्यास बहुत्व का स्वर है। आरोह अवरोह में इस स्वर पर स्वतंत्र होकर न्यास किया जाता है, यथा सा रे मा म रे सा, मंत्र कोमल नी मंत्र ध सा रे मा ध कोमल नी ध म रे मा इत्यादि। ऋषभ की भांति धैवत भी प्रस्तुत राग में न्यास व दीर्घ रहित होने पर भी आरोह अवरोह में यह स्वर मध कोमल नी ध तारसा या ध तारसा कोमल नी ध मध कोमल नी ध तारसा इस प्रकार लंघन रहित होकर प्रयोग होता रहता है। इस हेतु धैवत को इस राग में अभ्यास बहुत्व ही कहेंगे। हाँ, मंत्र सप्तक में यह स्वर म रे सा मंत्र कोमल नी मंत्र कोमल नी मंत्र ध रे सा मंत्र कोमल नी मंत्र ध म रे सा कड़युक्त मंत्र कोमल नी मंत्र ध मंत्र ध सा इस प्रकार यदा कदा न्यास युक्त भी दिखाई पड़ता है। आरोह का निषाद स्वर इसमें मंत्र कोमल नी मंत्र ध सा इस भांति वक्र होकर ही प्रयोग होता है। द्रुततान में मंत्र ध मंत्र कोमल नी सा इस प्रकार सीधा प्रयोग भी दिखाई पड़ता है, तथा मंत्र ध सा स्वर संगति में इसका लंघन प्रयोग भी स्पष्ट है। परंतु अवरोहात्मक निषाद इस राग में न्यास युक्त है, यथा म रे सा कड़युक्त मंद्रनी रे सा मंद्रनी मंद्रनी कोमल। पिछले सभी निषाद जो हैं वो मंत्र कोमल हैं। मंत्र कोमल नी ध मंत्र सा रे म रे सा मंत्र कोमल नी इत्यादि। अवरोहात्मक क्रम में निषाद का यह न्यास युक्त प्रयोग राग का सौंदर्य बढ़ाने में सहायक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत राग में आरोहात्मक क्रम में जहाँ निषाद का अनाभ्यास एवं लंघन दोनों ही प्रकार का अल्पत्व है, वहाँ इस स्वर का अवरोहात्मक क्रम में न्यास बहुत्व का स्थान है। इस प्रकार यह राग आधुनिक होने पर भी अपने स्वतंत्र स्वरूप के कारण प्रचार के सभी रागों से भिन्न एवं अत्यंत श्रुति मधुर है। पृष्ठ संख्या 30, आरोह। सारे मा ध कोमल नी ध तार सा, अवरोह तार सा कोमल नी ध मा रे सा मंत्र कोमल नी मंत्र ध सा। मुख्य स्वर समूह सारे मा म रे सा कड़युक्त मंत्र कोमल नी मंत्र कोमल नी मंत्र ध सा।